डैनियल की पुस्तक संख्या 158।
दर्शन का अनावरण। दानियल में शोक के दिनों को समझना।
फारस के राजा कुरेश के तीसरे वर्ष में दानियल को, जिसका नाम बेल्तशज्जर कहलाता था, एक बात प्रकट की गई, और वो बात सच्ची थी, पर नियत समय लंबा था, और उसने उस बात को समझा और उस दर्शन की समझ भी पाई। उन दिनों मैं दानियल 3 पूरे सप्ताह शोक करता रहा। मैंने कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया, न मांस और न दाखरस मेरे मुंह में आए, न मैंने तन पर तेल लगाया, जब तक 3 पूरे सप्ताह पूरे न हो गए। और पहले महीने के 24वें दिन, जब मैं उस बड़ी नदी के किनारे था जिसका नाम हिद्देकेल है। दानियल 10:1-4।
प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय के प्रतीकात्मक 3.5 दिनों में, जब 2 गवाह सड़स पर मृत पड़े हैं, एक वस्तु बेल्तशज्जर को प्रकट होती है। उसने पहले ही दर्शन मारेगो समझ लिया था, क्योंकि 9वें अध्याय में गब्रियल पहले ही आकर उसे उस दर्शन की समझ दे चुका था।
हाँ, जब मैं प्रार्थना में बोल ही रहा था, तभी स्वयं वही पुरुष गब्रियल, जिसे मैंने आरंभ में दर्शन में देखा था, शीघ्र उड़ता हुआ संध्या की भेंट के समय आकर मुझे छू गया, और उसने मुझे सूचित किया और मुझसे बातें की और कहा, हे दानियल, मैं अब तुझे बुद्धि और समझ देने आया हूँ। तेरी विनतियों के आरंभ ही में आज्ञा निकली, और मैं तुझे दिखाने आया हूँ, क्योंकि तू अत्यंत प्रिय है। इसलिए उस विषय को समझ और दर्शन पर विचार कर। दानियल 9:3।
पुरुष जिब्राइल, जिसे दानियल ने आरंभ की दर्शन में देखा था, ये खाजोन की ओर संकेत करता है, अर्थात भविष्यवाणी पूर्ण इतिहास का दर्शन, जो इस तथ्य की ओर इंगित कर रहा था कि अध्याय 8 में जिब्राइल दानियल के लिए बाइबिलीय भविष्यवाणी के राज्य संबंधी दर्शन का अर्थ समझा रहा था। परंतु दर्शन जिस पर दानियल को तब अध्याय 9 में ध्यान देना था, वो मारे अर्थात प्रकट होने का दर्शन था। तब जिब्राइल दानियल के लिए 2300 वर्ष की भविष्यवाणी का ऐतिहासिक विभाजन प्रस्तुत करता है। नवा अध्याय दारेवेश के पहले वर्ष में पूरा हुआ था, जब बेल्तशस्सर कुरूश के तीसरे वर्ष में ये कहता है कि उसे दर्शन की समझ हो गई थी, तब उसे मारे दर्शन की समझ 2 वर्षों से थी। शोक के उन दिनों में बेल्तशस्सर ने जो समझा, वो हमाए अर्थात इब्रानी शब्द दबर थी, और वो लंबी थी, क्योंकि ठहराया गया समय 2520 वर्ष का था। दानियल उस विषय का कुछ भाग पहले ही समझ चुका था, क्योंकि वो अध्याय 9 में लव्य व्यवस्था अध्याय 26 की प्रार्थना कर रहा था, और वही उस विषय की प्रार्थना है। 7 काल पर बढ़ा हुआ प्रकाश, जिसे बेल्तशस्सर ने 21 दिनों के शोक के दौरान समझा, और उन शोक के दिनों में 7 काल पर प्रकाश की वो वृद्धि 1856 में 7 काल पर हुए बड़े हुए प्रकाश का प्रतीक थी। मिलरवादी भी पहले से 7 काल के विषय को जानते थे, क्योंकि उन्होंने उसे घोषित किया था, परंतु उस पर एक अतिरिक्त प्रकाश दिया गया, जो उनके इतिहास के उसी बिंदु पर उन्हें परखने वाला था, जब वे फिलाडेल्फिया आंदोलन से लाओदिकिया आंदोलन में परिवर्तित हो रहे थे। बेल्तशस्सर के शोक के दिन उस भविष्यद्वाणीगत इतिहास के समांतर है, जब फिलाडेल्फियाई आंदोलन 1856 में लाओदिकियाई आंदोलन में परिवर्तित हुआ, और फिर 1863 में लाओदिकियाई एडवेंटिस्ट कलीसिया में। 7 काल पर बढ़े हुए प्रकाश से संबंधित बेल्तशस्सर और मिलरवादी दोनों के इतिहास उस संक्रमण के साथ सामंजस्य रखते हैं, जिसमें तृतीय स्वर्गदूत का लाओदिकियाई आंदोलन 144,000 के फिलाडेल्फियाई आंदोलन की ओर बढ़ता है, और शोक के दिनों में अर्थात ठहरने के समय के दौरान, जब 7 काल पर बढ़ा हुआ प्रकाश प्रकट किया जाना था, बेल्तशस्सर एक दूत और एक आंदोलन दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। उसके शोक के दिनों में दूत को उस बात को समझना है जो सत्य है, और तब उसे वो बात एक आंदोलन के सामने प्रस्तुत करना है, जब माइकल 2023 में 2 गवाहों को पुनर्जीवित करता है। इब्रानी शब्द मारे मसीह के स्वरूप का दर्शन, जिसे पहली आयत में दानियेल के समझने वाला बताया गया है, दानियेल के अंतिम दर्शन में चार बार प्रयुक्त हुआ है। दो बार इसका अनुवाद दर्शन और दो बार रूप किया गया है। पहली बार जब दानियेल इस शब्द का प्रयोग पहली आयत में करता है, वो ये दर्शाता है कि वो उस दर्शन को समझ गया, परंतु बाकी तीन संदर्भ ये दर्शाते हैं कि दानियेल स्वयं उस दर्शन का अनुभव कर रहा था। छठी आयत में मसीह का मुख बिजली के रूप जैसा था।
और पहले महीने के 24वें दिन, जब मैं उस बड़ी नदी के किनारे था जो हिद्देकेल है, तब मैंने अपनी आंखें उठाई और देखा, और देखो, सन के वस्त्र पहने एक व्यक्ति था जिसकी कमर उफाज के उत्तम सोने से कसी हुई थी। उसका शरीर भी बेरिल के समान था और उसका मुख बिजली की चमक जैसा था, और उसकी आंखें अग्नि के दीपकों के समान थीं, और उसकी भुजाएं और उसके पांव मांजे हुए पीतल के रंग के समान थे, और उसके वचनों की आवाज भीड़ की आवाज के समान थी। और मैं दानियेगा अकेला उस दर्शन को देख रहा था, क्योंकि जो पुरुष मेरे साथ थे उन्होंने उस दर्शन को नहीं देखा, परंतु उन पर बड़ा कम पड़ गया, इसलिए वे छिपने को भागे। इसलिए मैं अकेला रह गया और इस बड़े दर्शन को देखा, और मुझ में कोई शक्ति न रही, क्योंकि मेरी शोभा मेरे भीतर भ्रष्ट हो गई और मुझ में कोई शक्ति न रही। दानियेगा 10:4-8।
एक और हिब्रानी शब्द है जिसका अनुवाद दर्शन किया गया है, जिस पर हम हिब्रानी शब्द मारे की कुछ विशेषताएं प्रस्तुत करने के बाद चर्चा करेंगे। पिछले पदों में रूप शब्द प्रयुक्त हुआ है जो हिब्रानी शब्द मारे है। वही शब्द पद 16 में दर्शन के रूप में अनुदित है। पद 16 में मसीह के दर्शन ने दानियेल को दुखी कर दिया है।
और देखो, मनुष्यों के पुत्रों के समान एक ने मेरे होठों को छुआ, तब मैंने अपना मुंह खोला और बोला, और अपने सामने जो खड़ा था उससे कहा, हे मेरे प्रभु, इस दर्शन के कारण मेरे दुख मुझ पर आ पड़े हैं और मुझ में कोई शक्ति शेष नहीं रही। दानियेल तस्क सनात।
सौरो के रूप में अनुदित हिब्रू शब्द का अर्थ कब्जा होता है, और उस पद में दानियेल ने मसीह के प्रकट होने की जो दृष्टि देखी, उसने एक कब्जे को मोड़ दिया। भविष्यवाणी में कब्जा एक निर्णायक मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है।
अतीत के इतिहास से सीखें मिलती हैं और इन पर ध्यान दिलाया जाता है ताकि सब समझ लें कि परमेश्वर आज भी उसी रीति से कार्य करता है जिस रीति से वो सदैव करता आया है। इसके कार्य में और राष्ट्रों के बीच उसका हाथ आज भी ठीक वैसे ही दिखाई देता है जैसा कि तब से दिखाई देता आया है जब अदन में आदम को पहली बार सुसमाचार घोषित किया गया था। ऐसे काल आते हैं जो राष्ट्रों और कलीसिया के इतिहास में निर्णायक मोड़ सिद्ध होते हैं। ईश्वरीय प्रबंध में जब ये विभिन्न संकट आते हैं, तब उस समय के लिए प्रकाश दिया जाता है। यदि उसे ग्रहण किया जाता है तो आध्यात्मिक उन्नति होती है, यदि उसे अस्वीकार किया जाता है तो आध्यात्मिक अवनति और जहाज की डूब जाने जैसी तबाही आती है। प्रभु ने अपने वचन में सुसमाचार के आक्रामक कार्य को प्रकट किया है, जैसा कि वो अतीत में संचालित हुआ है और भविष्य में भी होगा, यहाँ तक कि अंतिम संघर्ष तक, जब शैतानी शक्तियां अपना अंतिम अद्भुत कदम उठाएंगी। बाइबल एको 26 अगस्त 1895।
16वां पद उस इतिहास में एक निर्णायक मोड़ को दर्शाता है जिसका प्रतिनिधित्व बेलते शज्जर कर रहा है। ये गणतंत्रीय सींग राष्ट्र और प्रोटेस्टेंट सींग कलीसिया दोनों के लिए एक निर्णायक मोड़ है। ये एक संकट को प्रकट करता है, और ये उस बिंदु का भी प्रतिनिधित्व करता है जहां उस इतिहास के लिए विशेष ज्योति प्रदान की जाती है। दानियेल के लिए ये निर्णायक मोड़ तब आया जब उसे तीन बार में दूसरी बार छुआ गया। दानियेल को तीन बार छुआ जाना था, और दूसरी बार जब उसे छुआ गया, वही दानियेल के लिए एक निर्णायक मोड़ था, और वो निर्णायक मोड़ उन तीन अवसरों में दूसरा था जब दानियेल ने मारेह दर्शन को देखा।
और देखो, मनुष्यों के पुत्रों के समान एक ने मेरे होठों को छुआ, तब मैंने अपना मुंह खोला और बोला, और अपने सामने जो खड़ा था उससे कहा, हे मेरे प्रभु, इस दर्शन के कारण मेरे दुख मुझ पर आ पड़े हैं और मुझ में कोई शक्ति शेष नहीं रही। दानियेल तस्क सनात।
हम शीघ्र ही उन तीन स्पर्शों पर चर्चा करेंगे। चार अवसरों में पहली बार जब दानियेल ने मारे शब्द का प्रयोग किया, वो उसकी ये गवाही थी कि वो उस दर्शन को समझ गया था। और अंतिम तीन संदर्भ ये बताते हैं कि जब उसने वास्तव में उस रूप को देखा तो उसका अनुभव क्या था। तीसरी बार वो उस रूप के दर्शन का उल्लेख पद 18 में करता है, जहां उसे तीसरी बार स्पर्श किया जाता है।
तब फिर एक जन जो मनुष्य के समान दिखाई देता था आया, और उसने मुझे छू लिया, और उसने मुझे बल दिया। दानियल 10:18।
दूसरे स्पर्श पर पद 16 में जो मरा दर्शन का दूसरा उल्लेख है, उसकी शक्ति जाती रहती है, परंतु तीसरे स्पर्श पर उसकी शक्ति पुनः बहाल हो जाती है। पद 10, 16 और 18 में दानियल को स्पर्श किया जाता है। पद 6 में दानियल मसीह के प्रकट होने का दर्शन करता है और फिर जिब्राइल को देखता है, और पद 10 में जिब्राइल पहली बार दानियल को स्पर्श करता है।
तब मैंने अपनी आंखें उठाकर देखा और क्या देखता हूं कि एक पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए था, जिसकी कटी उफाज के खरे सोने से कसी हुई थी। उसका शरीर भी पुखराज के समान था और उसका मुख बिजली के समान दिखाई देता था, और उसकी आंखें अग्नि के दीपकों के समान थीं, और उसकी भुजाएं और उसके पांव चमकाए हुए पीतल के रंग के समान थे, और उसके वचनों का शब्द भीड़ के शब्द के समान था। और मैं दानियल ने अकेले ही उस दर्शन को देखा, क्योंकि जो पुरुष मेरे संग थे उन्होंने उस दर्शन को नहीं देखा। तो भी उन पर बड़ा थरथराहट छा गया, यहां तक कि वे अपने को छिपाने के लिए भाग गए। इस कारण मैं अकेला रह गया और उस बड़े दर्शन को देखता रहा, और मुझ में कुछ भी बल न रहा, क्योंकि मेरी कांति बिगड़कर नष्ट प्राय हो गई और मुझ में बल न रहा। तब मैं उसके वचनों का शब्द सुन रहा था, और जब मैंने उसके वचनों का शब्द सुना तब मैं मुंह के बल भूमि की ओर मुख किए हुए गहरी नींद में था। और देखो, एक हाथ ने मुझे छुआ, जिसने मुझे मेरे घुटनों और मेरे हाथों की हथेलियों के बल उठा दिया, और उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उन्हीं समझ और सीधा खड़ा हो जा, क्योंकि अब मैं तेरे पास भेजा गया हूँ। और जब उसने मुझसे ये वचन कहा तब मैं कांपता हुआ खड़ा हो गया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि जिस पहले दिन तूने समझ प्राप्त करने और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करने के लिए अपना मन लगाया, उसी पहले दिन से तेरी बातें सुन ली गईं, और मैं तेरी बातों के कारण आया हूँ। परंतु फारस के राज्य के प्रधान ने 21 दिन तक मेरा सामना किया, परंतु देखो, मीकाएल, जो प्रधान सरदारों में से एक है, मेरी सहायता करने को आया, और मैं वहां फारस के राजाओं के पास ठहरा रहा। अब मैं तुझे ये समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरी प्रजा पर क्या बीतेगी, क्योंकि ये दर्शन अभी बहुत दिनों के लिए है। दानियल 10:5-14।
फिर पद 16 में दानियल को दूसरी बार स्पर्श किया जाता है, जब वो मसीह का दर्शन देखता।
और जब उसने मुझसे ऐसी बातें कहीं, तब मैंने अपना मुख भूमि की ओर कर लिया, और मैं गूंगा हो गया। और देखो, मनुष्यों के पुत्रों के सदृश एक ने मेरे होठों को स्पर्श किया। तब मैंने अपना मुंह खोला और बोलकर उसके सामने जो खड़ा था उससे कहा, हे मेरे प्रभु, इस दर्शन के कारण मुझ पर पीड़ाएं आ पड़ी है और मुझ में कुछ भी बल नहीं रहा, क्योंकि ये मेरा प्रभु का दास इस मेरे प्रभु से कैसे बातें कर सकता है, क्योंकि जहां तक मेरा संबंध है तुरंत ही मुझ में कोई बल न रहा और न मुझ में श्वास ही शेष रही। दानियल 10:15-17।
तब दानियल को तीसरी बार छुआ जाता है, गब्रियल के प्रकट होने पर, मसीह के नहीं।
तब फिर एक जो मनुष्य के समान दिखाई देता था आकर मुझे छू गया, और उसने मुझे बल दिया और कहा, हे अत्यंत प्रिय पुरुष, मत डर, तुझ पर शांति हो, दृढ़ हो, हाँ दृढ़ हो। और जब उसने मुझसे ये कहा तो मुझे बल मिला, और मैंने कहा, मेरे स्वामी बोले, क्योंकि आपने मुझे बल दिया है। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं तेरे पास क्यों आया हूँ? और अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौट जाऊँगा, और जब मैं निकल जाऊँगा तो देख, यूनान का प्रधान आएगा, परंतु मैं तुझे वो बताऊँगा जो सत्य के ग्रंथ में लिखा है, और इन बातों में मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, केवल तुम्हारा प्रधान मीकाएल। दानियल 10:18-21।
दानियल को तीन बार छुआ गया, और पहली तथा तीसरी बार उसे स्वर्गदूत गब्रियल ने छुआ। दूसरी बार उसे मसीह ने छुआ। दानियेल ने एक ही इब्रानी शब्द का चार बार प्रयोग किया, पर उन चार में से पहली बार अर्थात पहली आयत में वो ये कह रहा था कि उसने दर्शन को समझ लिया था। किसी सत्य को समझना महत्वपूर्ण है, पर यह सत्य का अनुभव करने के समान नहीं है, जैसा कि उसने अन्य तीन बार किया। जब दानियेल के शोक के दिन समाप्त हुए, तब उसे दर्शन का ऐसा अनुभव दिया गया जिसे वो अपने शोक के दिनों के समाप्त होने से पहले ही समझ चुका था। यह अनुभव तीन चरणों से बना था, जो तीन स्पर्शों द्वारा प्रदर्शित थे। पहला और अंतिम स्पर्श गब्रियल द्वारा किया गया और बीच का स्पर्श मसीह द्वारा। पहला और अंतिम स्पर्श हिब्रानी वर्णमाला के पहले और अंतिम अक्षर का प्रतीक थे। उस दूसरे चरण में दानियेल अपने प्रभु के प्रति अपने आप को एक विद्रोही पापी के रूप में पहचानता है, और इसलिए मध्य स्पर्श विद्रोह का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि हिब्रानी वर्णमाला के तेरहों का गरवों का दर्शाया गया है।
परंतु अब पतरस को ना नावों की सुध थी न माल की। ये चमत्कार अब तक देखे गए किसी भी अन्य चमत्कार से बढ़कर उसके लिए दैवी सामर्थ्य का प्रकटीकरण था। यीशु में उसने ऐसे एक को देखा जो समस्त प्रकृति को अपने वश में रखता है। दैवत्व की उपस्थिति ने उसकी अपनी अपवित्रता को प्रकट कर दिया। अपने स्वामी के प्रति प्रेम, अपनी ही अविश्वास के लिए लज्जा, मसीह के अनुग्रह के प्रति कृतज्ञता और सबसे बढ़कर अनंत पवित्रता की उपस्थिति में अपनी अशुद्धता का बोध, इन सब ने उसे अभिभूत कर दिया। जब उसके साथी जाल की पकड़ को सुरक्षित कर रहे थे, पतरस उद्धारकर्ता के चरणों में गिर पड़ा और पुकार उठा, हे प्रभु, मुझसे दूर हो जाइए, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। दैवीय पवित्रता की वही उपस्थिति थी जिसके कारण भविष्यद्वक्ता दानियेल परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने मानो मृतक सा गिर पड़ा। उसने कहा, मेरी शोभा मुझमें भ्रष्ट हो गई और मुझमें कोई शक्ति न रही। इसी प्रकार जब यशाया ने प्रभु की महिमा देखी तो वो पुकार उठा, हाय मुझ पर, क्योंकि मैं नाश हुआ जाता हूँ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठों वाले लोगों के बीच रहता हूँ, क्योंकि मेरी आँखों ने राजा सेनाओं के प्रभु को देखा है। दानियेल 10:5, यशाया 6:5। मानवता अपनी दुर्बलता और पाप सहित देवत्व की सिद्धता के सामने रखी गई और उसे अपने को सर्वथा अपर्याप्त और अपवित्र लगा। और जिन जिन को परमेश्वर की महानता और महिमा का दर्शन दिया गया है, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। पतरस ने उद्गार किया, मुझसे दूर चले जाओ, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। फिर भी वो यीशु के चरणों से लिपटा रहा, ये महसूस करते हुए कि वो उनसे अलग नहीं हो सकता। उद्धारकर्ता ने उत्तर दिया, भय ना कर, अब से तू मनुष्यों को पकड़ेगा। परमेश्वर की पवित्रता और अपनी अयोग्यता का दर्शन करने के बाद ही यशाया को दैवीय संदेश सौंपा गया, और पतरस को जब आत्मत्याग और दैवी शक्ति पर निर्भरता तक ले जाया गया, तभी उसे मसीह के लिए अपने कार्य का बुलावा मिला। द डिजायर ऑफ एजेस 246।
मारे है दर्शन मसीह के प्रकट रूप का दर्शन है, परंतु दानियेल द्वारा इस शब्द के दूसरे और चौथे प्रयोग में स्वर्गदूत गब्रियल का निरूपण किया गया है। पहली बार ये कहा गया कि बिल्तशज्जर ने उस दर्शन को समझ लिया, परंतु अंतिम तीनों प्रयोग दानियेल द्वारा उस दर्शन के अनुभव का संकेत करते हैं। जिन तीन अवसरों पर दानियेल उस दर्शन का अनुभव करता है, उन तीनों में उसे स्पर्श भी किया जाता है। गैब्रियल ने उसे पहली बार तब छुआ जब उसने महिमामय मसीह का स्वरूप देखा था, और उस अनुभव ने उसे मैं मुख के बल गहरी निद्रा में पड़ गया और मेरा मुख भूमि की ओर था की अवस्था में छोड़ दिया। उस दर्शन ने अलगाव उत्पन्न किया, क्योंकि जो उसके साथ थे उन्होंने वो दर्शन नहीं देखा, परंतु उन पर बड़ा कांपना छा गया, इसलिए वे अपने को छिपाने के लिए भाग गए। पहली निराशा में यिर्मयाह परमेश्वर के हाथ के कारण अकेला बैठा, और बेलतशस्सर में बल शेष न रहा, क्योंकि मेरी शोभा मेरे भीतर भ्रष्टता में बदल गई और मैं बल बनाए न रख सका। जैसे ही गैब्रियल ने पहली बार उसे छुआ, उसने दानियेल को घुटनों और हथेलियों के बल बैठा दिया। फिर उसने दानियेल को अपने कहे हुए वचनों को समझने और खड़ा होने की आज्ञा दी, और वो खड़ा हो गया, यद्यपि वो कांप रहा था। इसके बाद गैब्रियल ने दानियेल के शोक के 21 दिनों में क्या क्या हुआ उसका विवरण दिया। उसने बताया कि वो 21 दिनों तक फारस के राजाओं के साथ संघर्ष करता रहा। तब मीकाएल स्वर्ग से उतरकर उस युद्ध में शामिल हुआ और फिर गैब्रियल दानियल की प्रार्थनाओं का उत्तर देने तथा उसे ये समझाने आया कि अंतिम दिनों में तेरी प्रजा पर क्या बीतेगा। जब मीकाएल स्वर्ग से उतरा तब दानियल को अंतिम दिनों के विषय में समझाने के लिए गैब्रियल को भेजा गया। गैब्रियल का स्पष्टीकरण दानियल को 21 दिनों के शोक के अंत में दिया गया था, जो कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 के पंक्ति दर पंक्ति अनुप्रयोग में उस समय का प्रतिनिधित्व करता है जब यहेजकेल अध्याय 37 में उसे मृत हड्डियों से दो बार भविष्यवाणी करने की आज्ञा दी जाती है, ताकि दो भविष्यवक्ताओं को उनकी कब्रों से उठाया जा सके। ये तब होता है जब मीकाएल स्वर्ग से उतरकर मूसा के शरीर को पुनर्जीवित करता है, जबकि यहूदा की पुस्तक में वो शैतान से संवाद करने से इंकार करता है। गैब्रियल द्वारा शोक के दिनों का अवलोकन दे दिए जाने के बाद भी दानियल को अभी दो बार और छुआ जाना बाकी है। जब गैब्रियल ने अपनी बात समाप्त की तब दानियल ने अपना मुख भूमि की ओर किया और वो गूंगा हो गया, और फिर स्वयं मसीह ने दानियल के होठों को छुआ। तब दानियल ने अपना मुंह खोला और बोला और जो मेरे सामने खड़ा था उससे कहा, हे मेरे प्रभु, इस दर्शन के कारण मेरे दुख मुझ पर फिर पड़े हैं और मुझ में कुछ भी बल नहीं रहा, क्योंकि मेरा ये प्रभु का सेवक मेरे इस प्रभु से कैसे बात कर सकता है, क्योंकि जहां तक मेरा प्रश्न है तुरंत ही मुझ में कोई बल न रहा और न मुझ में प्राण ही शेष रहा। मसीह को देखना और उनसे बात करना, इस अनुभव ने दानियल को धूल तक नम्र कर दिया। वो मौन हो गया, और यदि मसीह ने उसके होंठों को न छुआ होता तो वो मौन ही रहता, जैसे यशाया के होंठ वेदी से लिए गए अंगारे से छुए गए थे। हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
जब यशाया ने अपने प्रभु की महिमा और प्रताप के इस प्रकाशन को देखा तो वो परमेश्वर की शुद्धता और पवित्रता की भावना से अभिभूत हो गया। उसके सृष्टिकर्ता की अतुलनीय परिपूर्णता और उन लोगों के पापमय जीवन के बीच कितना तीव्र विरोधाभास था जो स्वयं उसके साथ इज़राइल और यहूदा की चुनी हुई प्रजा में लंबे समय से गिने जाते रहे थे। हाय मुझ पर विपत्ति, वो पुकार उठा, क्योंकि मैं तो नष्ट हो गया हूँ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठों वाली प्रजा के बीच रहता हूँ, क्योंकि मेरी आंखों ने राजा सेनाओं के प्रभु को देखा है। पद 5। मानो वो भी तरी पवित्र स्थान में दिव्य उपस्थिति के पूर्ण प्रकाश में खड़ा था। उसे ये एहसास हुआ कि यदि उसे उसकी अपनी अपूर्णता और अयोग्यता पर छोड़ दिया जाए तो जिस मिशन के लिए उसे बुलाया गया था उसे वो सर्वथा पूरा न कर सकेगा, परंतु एक सेराफ उसकी व्यथा दूर करने और उसके महान मिशन के लिए उसे योग्य बनाने को भेजा गया। वेदी से लिया गया एक जलता हुआ अंगारा उसके होंठों पर रखा गया और ये वचन कहा गया, देख, ये तेरे होंठों को छू गया है और तेरा अधर्म दूर कर दिया गया है और तेरा पाप शुद्ध कर दिया गया है। तब परमेश्वर का स्वर सुनाई दिया, मैं किसे भेजूं और हमारे लिए कौन जाएगा? और यशाया ने उत्तर दिया, देख, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। पद 7-8। स्वर्गीय अभ्यागत ने प्रतीक्षारत दूत से कहा, जाओ और इस प्रजा से कहो, तुम सुनते तो रहो पर समझो नहीं, और देखते तो रहो पर पहचानो नहीं। इस प्रजा का मन मोटा कर, उनके कान भारी कर दे और उनकी आंखें मूंद दे, कहीं ऐसा न हो कि वे अपनी आंखों से देखें, अपने कानों से सुने, अपने हृदय से समझें और फिरें और चंगे हो जाएं। पद 9-10। भविष्यद्वक्ता का कर्तव्य स्पष्ट था, उसे व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध अपनी आवाज उठानी थी, परंतु वो आशा के किसी आश्वासन के बिना ये कार्य हाथ में लेने से डरता था। प्रभु, कब तक? उसने पूछा। पद 11। क्या तेरे चुने हुए लोगों में से कोई भी कभी समझेगा, पश्चाताप करेगा और चंगा होगा ही नहीं? भटकते यहूदा के लिए उसकी आत्मा का बोझ व्यर्थ नहीं सहा जाएगा, उसका कार्य सर्वथा निष्फल न रहेगा। तथापि जो बुराइयां बहुत सी पीढ़ियों से बढ़ती आई थीं, वे उसके दिनों में दूर नहीं की जा सकती थीं। अपने जीवन भर उसे धैर्यवान, साहसी शिक्षक, विनाश के साथ साथ आशा का भी एक भविष्यद्वक्ता बना रहना था। जब दिव्य उद्देश्य अंततः बुरा होगा, तब उसके प्रयत्नों का और परमेश्वर के सब विश्वास योग्य दूतों के परिश्रम का पूर्ण फल प्रकट होगा, एक अवशेष बचाया जाएगा। ये घटित हो सके इसलिए चेतावनी और विनती के संदेश उस विद्रोही राष्ट्र को सुनाए जाने थे। प्रभु ने घोषित किया, जब तक नगर निवासी रहित होकर उजाड़ न हो जाएं और घरों में कोई मनुष्य न रहे और देश बिल्कुल निर्जन न हो जाए और यहोवा मनुष्यों को दूर न कर दे और देश के बीच में बड़ा उजाड़ न हो। पद 11-12। जो लोग पश्चाताप नहीं करते उन पर टूट पड़ने वाले कठोर दंड, युद्ध, निर्वासन, अत्याचार, राष्ट्रों के बीच शक्ति और प्रतिष्ठा की हानि, ये सब इसलिए आने वाले थे कि जो लोग उनमें रुष्ट परमेश्वर का हाथ पहचाने वे पश्चाताप करने को प्रेरित हों। उत्तरी राज्य की दसों जातियां शीघ्र ही राष्ट्रों के बीच तितर बितर कर दी जानी थीं और उनके नगर उजाड़ छोड़ दिए जाने थे। विरोधी राष्ट्रों की विध्वंसकारी सेनाएं बार बार उनकी भूमि पर चढ़ाई करने वाली थीं। अंततः यरूशलेम भी गिरना था और यहूदा को बंदी बनाकर ले जाया जाना था, तो भी प्रतिज्ञात भूमि सदा के लिए पूरी तरह परित्यक्त रहने वाली न थी। यशाया के प्रति स्वर्गीय आगंतुक का आश्वासन ये था, उसमें दसवां भाग रहेगा और वो लौट आएगा और भक्षण किया जाएगा, जैसे तेरबिंत और बलूत जिनका ठूंठ उनमें रहता है जब वे अपने पत्ते गिराते हैं, वैसे ही उसका ठूंठ पवित्र बीज होगा। पद 13। परमेश्वर के उद्देश्य की अंतिम पूर्ति के इस आश्वासन ने यशाया के हृदय में साहस भर दिया। फिर चाहे सांसारिक शक्तियां यहूदा के विरुद्ध क्यों न पंक्तिबद्ध हो जाएं, फिर चाहे प्रभु के दूत को विरोध और प्रतिरोध का सामना ही क्यों न करना पड़े, यशाया ने राजा सेनाओं के प्रभु को देखा था। उसने सेराफों का ये गीत सुना था, संपूर्ण पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण है। उसके पास ये प्रतिज्ञा थी कि विमुख यहूदा के लिए यहोवा के संदेशों के साथ पवित्र आत्मा की दोषी ठहराने वाली सामर्थ्य भी होगी और भविष्यद्वक्ता अपने सामने के कार्य के लिए दृढ़ हो गया। पद 3। अपने दीर्घ और कठिन सेवा कार्य के दौरान वो इस दर्शन की स्मृति अपने साथ लिए रहा। 60 वर्ष या उससे अधिक समय तक वो यहूदा के लोगों के सामने आशा के भविष्यद्वक्ता के रूप में खड़ा रहा। कलीसिया की भविष्य की विजय के विषय में अपनी भविष्यवाणियों में और भी अधिक निर्भीक होता गया। भविष्यद्वक्ता और राजा 310-300।